ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। इत्थं विरिञ्चा स्तुतकर्म विरजः प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यां चतुर्भुजः शङ्खगदाब्जचक्रः पिशङ्गवासानलिनायते क्षणः। सुबह के सत्र में सुन रहे थे, श्री भगवान अदिति जी के गर्भ में आए हैं और उनके गर्भगत भगवान की स्तुति श्री ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अनेक श्लोकों में भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए स्तुति किए। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी उनके शक्ति और कर्म की वर्णन कर लिए, तब अजन्मा भगवान, जो जन्म नहीं लेते हैं, जिनका जन्म असाधारण है, यहाँ अमृत भूर दित्याम, अदिति के द्वारा वो अमृत भगवान प्रादुर्बभुआ, प्रादुर्बभुआ अमृत, अमृत भू कहते हैं कि जिनका जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, वो भगवान प्रकट हुए, जन्म मृत्यु से परे अदिति के गर्भ से प्रकट हुए, उनके सामने प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो उनका रूप क्या था, वो चतुर्भुज थे, चार भुजाएं थी, चारों भुजाओं में एक में शंख, एक में गदा, एक में कमल और एक में चक्र। शंख गदाब्ज चक्र, अब्ज माने कमल धारण किए हुए थे, और पिशंग वासा पीताम्बर धारण किए हुए थे। नलिनायत क्षण, नलिन आयत क्षण, आयत माने बड़े बड़े, नलिन कहते हैं कोमलता की दृष्टि में, सुंदर लाल लाल कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे, आयत क्षण बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार भगवान अवतार लिए। ततस्त्वष्टादशे भूत्वा वामनः सत्कृतोऽखिलैः यज्ञं गतस्ततस्तेन सत्कृतोक्तो वरान् वृणुः। इस आठवें अध्याय में भगवान वामन देव के अवतार की कथा है। भगवान अवतार लिए अदिति के गर्भ से और भगवान का स्वागत हुआ ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा उनका स्वागत स्वीकार किए, सत्कार प्राप्त किए। इसके बाद बलि महाराज के यज्ञ में पहुंचे, इसका वर्णन है। इत्थम विरिंचेन स्तुतम कर्म देव कार्यम लक्षणम वीर्यम च प्रभावो जस्य सह। वह भगवान जिनकी ब्रह्मा जी गुह्य नाम भी, भगवान के विभिन्न नामों की स्तुति किए, जो अभी प्रकट नहीं हुआ था उन कर्मों का भी वर्णन किए, उनके अनुरूप भगवान प्रकट होकर लीला किए, किस प्रकार भगवान का रूप था इसका वर्णन किया गया। और एक शब्द है अमृत भू, अमृत भू पर श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं मृत्यु जन्म शून्य, जो जन्म मृत्यु से रहित हैं, जिनका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, वो भगवान। इसी अमृत भू पर श्रील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि अमृत भू का अर्थ है जन्म मृत्यु से रहित। जन्म मृत्यु से रहित का अर्थ है कि जिनका जन्म और जिनकी मृत्यु, मृत्यु माने जाना और कर्म असाधारण है, साधारण मनुष्यों जैसा नहीं है। भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। हे अर्जुन, मेरा जन्म कर्म सब दिव्य है, साधारण नहीं है। ऐसा नहीं कि जन्म लिए और जन्म लेते ही अपार दुख की अनुभूति कर रहे हैं, रो रहे हैं। रोना निश्चित रूप से दुख का द्योतक है। बच्चा जन्म लेते ही रोता है, इसका अर्थ है कि दुखी है किसी न किसी रूप में। लेकिन भगवान के जन्म में और मनुष्यों के जन्म में अंतर है। उनको साधारण जन्म नहीं कहा जा सकता, उनका प्राकट्य होता है। जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो उनके अवतार का डिटेल वर्णन होता है किस रूप में आते हैं। खूब सुंदर श्रृंगार है, पीताम्बर धारण किए हैं और शंख चक्र गदा कमल लिए हुए हैं। खूब सुंदर कोमल और बड़ी बड़ी आंखें हैं। अभी वर्णन हो रहा है, आगे भी वर्णन होगा। तो भगवान का जन्म दिव्य है और जन्म लेते ही श्री भगवान तीन जन्मों की कथा वसुदेव और देवकी को सुनाए। अपनी कुंडली कौन चलाए, माता पिता की कुंडली बनाने लगे कि आप पहले क्या थे, प्रिश्नी और सुतपा के रूप में आप लोगों ने तपस्या किया, उस समय मैं आपका पुत्र बना, उस समय मेरा नाम प्रिश्नी गर्भ था, फिर आपने कश्यप और अदिति के रूप में जन्म लिया, उस समय मैं आपका पुत्र बना, उस समय मेरा नाम था उपेंद्र बामन, और आप तीसरी बार वही आप वसुदेव और देवकी के रूप में हैं और मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा प्रसिद्ध नाम होगा वासुदेव। तो इस प्रकार भगवान तीन जन्म की कथा भी कहते हैं और बड़ा सुंदर रूप है। माता कौशल्या के सामने जब प्रकट हुए तो वैसे ही सुंदर रूप। माँ कौशल्या देख कर चकित हो गई और कहती है कि हे तात, यह रूप बहुत सुंदर है, अद्भुत है, लोग विश्वास नहीं करेंगे। देवकी जी भी यही कहती है कि आपका यह रूप देखकर कोई विश्वास करेगा कि आप मेरे गर्भ से जन्म लिए हैं, लेकिन आप बड़े कृपालु हैं, मुझको माँ बनने का सौभाग्य दिए। वही कौशल्या जी भी कहती हैं कि हे तात, आप इस रूप को त्यागिए, चतुर्भुज रूप बालक बन जाइए, कि जय सुलीला अति प्रिय शीला तजहु तात यह रूपा, आप बालक बनकर हमारे गोद में बच्चे बनकर खेलिए, इस चतुर्भुज रूप को मत प्रकट कीजिए, मैं आपको बालक रूप में देखना चाहती हूँ। तो माँ के इच्छा के अनुसार भगवान बालक बन गए और यहाँ भी देवकी के सामने भी बालक बन गए। फिर भी देवकी डरते हुए भी कह रही थी कि हे प्रभु, आपके अवतार प्रकट होने की बात जब कंस सुनेगा तो उसको क्या होगा, वो तो मारने के लिए आएगा। भगवान के रूप में समझ कर भी वात्सल्य में भर गई। तब भगवान कहते हैं कि पिताजी, माँ आप लोगों को भय है ना कंस से, तो एक काम कीजिए कि मुझे नंद ब्रज में पहुंचा दीजिए। आप लोगों के भय है तो उसको क्या दिखाना है, तो वहां जसोदा के गर्भ से एक पुत्री हुई है, उसको लेकर आ जाइए। स्वयं भगवान उपाय बताते हैं। तो यह जन्म साधारण लोगों के जन्म से भिन्न है, दिव्य है, और कर्म भी दिव्य है। छह दिन के अवस्था में पुतना जैसे राक्षसी को मारना, गिरिराज उठा लेना, कालिये जैसे नाग का दमन करना, आग पी जाना, ये सब कर्म अमानवीय कर्म है, मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए इनका जन्म और कर्म दिव्य है, इसको हम साधारण जन्म से उपमा नहीं दे सकते। तो फिर आगे वर्णन करते हैं कि भगवान का सौंदर्य कैसा है और श्रृंगार का वर्णन। श्यामा वदातो झसराज कुंडल स्तिशोलसत्सी बदनाम्बुज पुमान श्रीवत्स वक्षा बलयांग दोलसन किरीट कांची गुण चारुनुपुर। श्री भगवान का शरीर विशुद्ध श्याम वर्ण का है। श्यामा वदात, श्याम वर्ण का शरीर है। श्याम वर्ण साधारण काला कोयले की तरह नहीं, भगवान बहुत सुंदर हैं, दिव्य नीलमणि के समान सुंदर चमकता हुआ भगवान का शरीर है। और झसराज कुंडल तीसा और मकराकृत कुंडल धारण किए हैं, ये बाद के श्रृंगार का वर्णन नहीं है, अवतार लेते ही कुंडल पहने हुए हैं। श्री बदन अम्बुजा उलसत और मुख कमल के समान, खिले हुए कमल के समान दिख रहा है, एकदम सुंदर, जैसे उल्लसित कमल हो, एकदम पूर्ण खिला हुआ। पुमान श्री वक्ष और परम पुरुष का वक्ष स्थल बहुत सुंदर लग रहा है, उस पर श्री वत्स वक्षा, श्री वत्स का चिन्ह है, वहां सुंदर स्वर्ण की रेखाओं में रुमावली है छाती में, जहां श्री जी निवास करती हैं। बलय अंगद, और हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद है, सिर पर किरीट है, मुकुट धारण किए हैं और कांची गुणा, और कमर में करधनी की लड़ियां हैं, खूब सुंदर मणियों की लड़ियों का बेल्ट है, और चार नुपुर, और चरणों में खूब सुंदर नुपुर है, उल्लसत जगमगा रहा है। इस तरह भगवान खूब सुंदर लग रहे हैं, उनके श्रृंगार उनके आभूषण का वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर भगवान लग रहे हैं। उल्लसत चार नुपुर, सुंदर नुपुर से उल्लसित है, बहुत अच्छा लग रहे हैं। मधु व्रत व्रात विघूषणयाशया विराजित श्री वनमालया हरि प्रजापतिर वेश्म तमः सरोचिषा विनाशयन कंठ निविष्ट कौस्तुभः। स्वया वनमालया मधु व्रत व्रात विघूषणया, भगवान के गले में उनका स्वरूप भूत माला है, जो वनमालया, भगवान वन के पुष्पों की माला पहनते हैं, खूब सुंदर सुगंधित और विविध रंग के पुष्प का माला उनके स्वरूप में माला है। स्वया वनमालया का अर्थ है वो स्वरूपगत माला, भगवान माला धारण करते हैं सर्वदा, वो माला धारण किए हुए पहले से ही प्रकट है। अवतार लेने के बाद माला डालना, श्रृंगार करना, स्वागत करना, वो तो बाद की चीज है, अलग से फिर श्रृंगार होगा स्पेशल, लेकिन भगवान प्रकट हुए तो माला पहने हुए थे, और इतना सुंदर माला पहने हुए थे, माला के पुष्पों से खूब गंध निकलता था, और उस गंध के लोभ से मधु व्रत व्रात विघूषणया झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। वो तो मधु लोभी हैं, सुगंध के लिए भौरे उन मालाओं के तरफ गुंजार कर रहे थे। कभी कभी भौरों के वर्णन होता है भगवान के साथ, तो लगता है भन 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 भन, जिधर भगवान चलते हैं उधर भौरे, कैसा लगता होगा लेकिन वो भौरे जो भगवान के साथ चलते हैं, वो मधु के लोभी हैं, प्लस भगवान के गुणों को गाते हैं। साधारण भ्रमर नहीं है, जिसे मधुमक्खी मधु के लोभ से भ्रमर चलते हैं और वो किसी को मार देते हैं, डंक मारते हैं, वो नहीं होते हैं। बड़े बड़े मुनि लोग बहुत जतन करके वो भौरे का शरीर प्राप्त किए हैं, भगवान के पार्षद होते हैं, और वेद के ऋचाओं से भगवान के गुणों को गुनगुनाते रहते हैं। माला के सुगंध और भगवान के शरीर से सुगंध निकलता है, उस सुगंध के लोभ से घूमते हैं और भगवान को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। भगवान अपने हाथ में कमल के फूल लेकर रहते हैं, कभी कभी उन भ्रमरों को हटाने के लिए। जब श्री जी के साथ चलते हैं, श्रीमती राधा रानी के साथ, जैसे भगवान के साथ भ्रमर चलते हैं वैसे राधा रानी के साथ भी, तो उनके चेहरे पर भ्रमर न आवे इसके लिए कमल का फूल लेकर चलते हैं हटाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भगवान के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, कमल का क्या उपयोग है, वो फूल क्यों लिए रहते हैं, तो उन भ्रमरों को हटाने के लिए श्री जी के चेहरे पर भ्रमर उनके गाल पर बैठ न जाए इसके लिए कमल के फूल से हटाते हैं। तो झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे हैं, और कंठ निविष्ट कौस्तुभ, उनके कंठ में कौस्तुभ मणि है, श्री विराजित, बहुत सुंदर लग रहा है, गले में कौस्तुभ मणि। श्री हरि स्वरोचिषा प्रजापते विष्म तमह विनाशयन, श्री भगवान की अंग कांति से स्वरोचिषा करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा आभा भगवान से निकल रही है। जानते हैं दुनिया में जो प्रकाश है वो कहां से आया है, भगवान के शरीर के अंग कांति से, खास करके भगवान के नख के प्रभाव से, चरणों के नख की ज्योति से प्रकाश निकलता है, और इतना दिव्य प्रकाश है कि उस बैकुंठ धाम में परमानेंट प्रकाश है, जरूरत ही नहीं सूर्य चंद्रमा का। इसीलिए कहते हैं न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, हमारे धाम में सूर्य चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं। और वही प्रकाश बैकुंठ धाम के जब बाहर निकलता है तो इतना प्रकाश दिखता है बैकुंठ के बाहर, उसी प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो भी दिव्य है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग बैकुंठ में जाने की बात ही भूल जाते हैं उस प्रकाश के सुख में, इतना सुंदर प्रकाश है कि उसी प्रकाश में अपने को विलीन करने में सुख की अनुभूति करते हैं, वो भी स्पिरिचुअल प्रकाश, दिव्य प्रकाश है। और उस ब्रह्म ज्योति का प्रकाश जब नीचे प्राकृत लोक में आता है तो जो चमकने वाले ग्रह नक्षत्र हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है, सूर्य में जो प्रकाश है उस ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, और सूर्य उससे प्रकाशित होकर अन्य ग्रहों को प्रकाशित करते हैं। सूर्य का प्रकाश से चंद्रमा और अन्य तारे प्रकाशित होते हैं। जैसे कभी दर्पण लेकर आप सूर्य के प्रकाश में दर्पण को रखें तो सूर्य का प्रकाश दर्पण पर पड़ता है और दर्पण से प्रतिबिंबित होकर वो कहीं दूसरे जगह भी, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, घर में भी जा सकता है। ऐसे तिरछा करने पर सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होकर जाता है। वैसे ही ब्रह्म ज्योति का प्रकाश सूर्य पर और सूर्य का प्रकाश अन्य ग्रहों पर और अन्य ग्रहों का प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित है। यहाँ भी जो प्रकाश है वो भगवान के शरीर का प्रकाश है। तो वहां जब भगवान प्रकट हो गए तो उनके अंग कांति से प्रजापति का वह घर, अदिति का घर प्रकाशमान हो गया, एक अद्भुत दिव्य प्रकाश से भर गया, मनोरम प्रकाश से। उनका सब कुछ मनोरम था, वनमाला मनोरम, शरीर की कांति मनोरम, विविध प्रकार के आभूषण मनोरम। श्री हरि वहां विराजमान हुए। दिशः प्रसेदो सलिला सयास्तदा प्रजा प्रहिष्टा रितो गुणान्विता दौरंतरिक्षम क्षितिरग्नि जिह्वा गावो दुजासन जरहुष नगाश्च। तदा उस समय दिशः सलिलः आशया प्रसेदु, जब श्री भगवान प्रकट हुए, प्रकट हुए स्वर्ग लोक में अदिति के आश्रम में, लेकिन वह अदिति का आश्रम इसी प्राकृत जगत में है। तो जब भगवान आए तो भगवान के आते ही समस्त दिशाएं निर्मल हो गई, कहीं धूल नहीं, कहीं धुआं नहीं, कहीं अंधकार नहीं, सारा जगत प्रकाशित हो गया, सब जगह दिशाएं निर्मल हो गई। और सलिला आशया प्रसेदु, और नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया अपने आप। जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आता है किसी स्थान पर तो लोग उनके स्वागत में सफाई करते हैं। कोई बड़ा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कहीं आ जाए तो सारा गली, रोड, स्थान सब साफ कर देते हैं, कहीं गंदा न दिखाई दे। तो जब श्री भगवान आते हैं इस प्राकृत जगत में तो प्रकृति पूरे जगत को सजा देती है उनके स्वागत में। जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी रोड से गुजरता है तब गेट बनाते हैं, वेलकम, स्वागतम लिख कर रखते हैं, और जगह जगह पर माला फूल लेकर खड़े रहते हैं स्वागत के लिए। वैसे ही प्रकृति पूरा सजा देती है इस जगत को। सारे नदी सरोवर के जल स्वच्छ हो गए और दिशाएं निर्मल हो गई, और प्रजा प्रहिष्ठा, और समस्त प्रजाओं के, सभी व्यक्तियों के हृदय में प्रकृष्ट आनंद छा गया अपने आप। किसी को पता नहीं था क्यों आनंद है, लेकिन आनंद की बाढ़ आ गई, एक अद्भुत खुशी। और ऋतवः गुण अन्विता, और सब ऋतुएं एक साथ अपना गुण प्रकट कर दी। जिस समय भगवान प्रकट हुए उस समय श्रावण का महीना था, बरसात का महीना, लेकिन जाड़ा का ऋतु भी अपना गुण प्रकट कर दी, माने जाड़े के मौसम में जो फूल फूलते हैं वो उस समय फूल गए। ऋतवः गुण अन्विता, सब ऋतुएं एक साथ अपना गुण प्रकट करने लगी। और द्यौ अंतरिक्षम क्षिति अग्नि जिह्वा गाव द्विजा चन्नगा संजर हुसु, कि सब जगह स्वर्ग लोक में, देव माने स्वर्ग लोक में, अंतरिक्ष अंतरिक्ष में, और क्षिति पृथ्वी पर, सब जगह आनंद छा गया। और मुख्य रूप से अग्नि जिह्वा, जिनकी जिह्वा अग्नि है, देवता अग्नि जिह्वा देवताओं को कहते हैं, क्योंकि अग्नि से देवता लोग भोजन ग्रहण करते हैं हवन के द्वारा। देवताओं का नाम ले लेकर अग्नि में हवन किया जाता है तो देवताओं को प्राप्त होता है। तो अग्नि जिह्वा मतलब देवता। और गाव गाय, द्विजा ब्राह्मणगण, च नगा और पर्वत, सब लोग सब जगह सबके हृदय में हर्ष का संचार हो गया, सब जगह खुशी छा गई, सबके हृदय में आनंद छा गया जब भगवान आए। तो फिर आगे बतलाते हैं कि किस मुहूर्त में, किस समय भगवान आए। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्तद जन्म दक्षिणम। जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे, और द्वादश्याम अभिजीति मुहूर्ते प्रभु। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी और अभिजीत मुहूर्त था, उसमें भगवान का अवतार हुआ। उस द्वादशी को वामन द्वादशी कहते हैं, आज वामन द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान अलग अलग तिथियों में अवतार लेकर के अपने नाम से उस तिथि को पवित्र कर दिए, अलंकृत कर दिए हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तो उस अष्टमी को ही कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। जब भगवान शुक्ल पक्ष के नवमी को चैत मास के अवतार लिए, तो उस नवमी को रामनवमी कहते हैं, श्री राम नवमी। जब चतुर्दशी में भगवान आए तो नृसिंह चतुर्दशी, उनके नाम से वो तिथि प्रसिद्ध है। उसी प्रकार वामन द्वादशी, श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, फाल्गुन पूर्णिमा को अवतार लिए तो पूर्णिमा गौर पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। भगवान तिथियों को अलंकृत करते हैं। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का अवतार हुआ, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी। सर्वे नक्षत्र ताराद्या तत् जन्म दक्षिणम चक्रु। जिस समय भगवान का अवतार हुआ तो सारे नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म की मंगल सूचना दे रहे थे, सब में आनंद छाया हुआ था। किस समय भगवान का अवतार हुआ, द्वादशी नक्षत्र, द्वादशी तिथि तो बतला दिए, महीना भी बतला दिए, लेकिन समय कहते हैं कि जिस समय भगवान का अवतार हुआ उस तिथि को विजया द्वादशी कहते हैं या वामन द्वादशी कहते हैं। आगे का श्लोक में कह रहे हैं, द्वादश्याम सविता तिष्ठन मध्यन दीन गतो नृप, विजया नाम साप्रोक्ता जस्याम जन्म विदुर हरे है। द्वादश्याम सविता तिष्ठन मध्यन दीन गतो नृप, हे राजन, जिस समय भगवान का अवतार हुआ उस समय सूर्य मध्य आकाश में थे, दोपहर का 12 बज रहा था। जिस तरह से श्री राम दोपहर में अवतार लिए, उसी तरह भगवान वामन देव। विजया नाम साप्रोक्ता, सा वह द्वादशी विजया नाम से प्रसिद्ध है। जस्याम जन्म विदुर हरे, जिस समय भगवान का जन्म हुआ, जिस समय भगवान जन्म लिए उस तिथि को विजया द्वादशी कहते हैं। और भगवान जब अवतार लिए तो दोपहर का समय था, सूर्य मध्य भाग में स्थित थे। और भगवान के अवतार लेने पर सब में खुशी छा गई, स्पेशल देवताओं में। देवता तो बहुत प्रसन्न थे। शंख दुनु भयो ने दु मृदंग पणवा नका, चित्र बाधित तुरियाणाम निर्घोष तुमलो भवत। भगवान के अवतार के समय शंख दुनुभिया मृदंग डफ नगाड़े आदि बजने लगे। मृदंग पणव, पणव का हिंदी अनुवाद किया गया डफ, कोई बाजा है। और आनका, आनक नगाड़े, बहुत बड़े बड़े बाजे बजने लगे, स्वर्गीय बाजे अपने आप बजने लगे। चित्र बाधित तुरियाणाम तुमल निर्घोष अभवत, और फिर तरह तरह के बाजे, तुरहियों का तुमुल ध्वनि होने लगी। जो वाद्य बजाने वाले थे खुशी में बजाने लगे। केवल बाजे ही नहीं बज रहे हैं, कभी कभी बाजे ऐसे बजने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, वो खराब लगने लगता है। तो बाजे तो बजने ही लगे, लेकिन उस वाद्य के साथ नृत्य भी होने लगा और गान भी। जितने कलाकार थे स्वर्गीय, वो सब नाचने लगे, गाने लगे। प्रीता चाप सरसो नृत्य गंधर्व प्रवरा जगहु, तुष्ट मुनो देवा मनव पितरोग्नय। प्रीता अप्सरस अनृत्यन, आनंद से प्रसन्न होकर अप्सराएं नाचने लगी। वाद्य बजने लगा, ढंग से बज रहा था, ऐसे केवल आवाज नहीं आ रहा था, बहुत ढंग से बजा रहे थे। तो उस वाद्य के ऊपर अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। और गंधर्व प्रवरा जग्यु, श्रेष्ठ गंधर्व लोग गाने लगे, गंधर्व लोग गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। और मुनय देवा मनव पितर अग्नय तुष्टु, और मुनि लोग, देवता लोग, मनु, पीतर और अग्नि सब स्तुति करने लगे। बड़े बड़े देवता भगवान के गुणों का वर्णन करने लगे, सब गीत गाने लगे। जिनको गाने की क्षमता वो गा रहे हैं, जो नाच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही गद्य में स्तुति कर रहे हैं, कुछ लोग सुंदर स्तोत्र में वेद के ऋचाओं से, जो जिनके पास जैसी क्षमता है वैसा वर्णन कर रहे हैं। और आगे वर्णन आएगा कि इसके साथ साथ देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे भगवान के ऊपर। इतना पुष्पों की वर्षा किए कि अदिति जी का वो आश्रम ही ढक गया फूल से, पूरा पुष्पों से ढक गया। अब वहां कोई आश्रम कोई भवन नहीं दिखाई देता था, लगता था कि केवल पुष्प का पहाड़ है, विविध रंग के फूल, इतना फूल गिराया गया। आगे वर्णन है, सिद्ध विद्या धरगड़ा किंग पुरुष किन्नरा चारणा यक्ष रक्षांसी सुपर्णा भुज गौतमा। सिद्ध विद्याधर चारणगण किम पुरुष किन्नर ये सब उप देवता है स्वर्ग में, ऐसे लोग हैं कि पूरा पूरा मनुष्य नहीं है, अन्य देवता है, बीच के हैं, तो उन पर संभावना की जाती है क्या नर है किन्नर, क्या नर है कि देवता है, कुछ क्लियर नहीं होता है देखने पर, देखने में लगता है कि मनुष्य है तो किन्नर, हमेशा क्वेश्चन बना रहता है उनके साथ, नहीं मनुष्य से भिन्न लग रहा है, देवता है, नहीं नहीं नर है, तो इसलिए उनको किन्नर क्वेश्चन वाचक नाम रखा गया है, प्रश्नवाचक। किम पुरुष, क्या पुरुष है, देखने में लगता है कि अरे स्त्री जैसा लग रहा है, नहीं नहीं स्त्री नहीं पुरुष है, किम पुरुष, तो ये लोग उपदेवता हैं, किम पुरुष किन्नर, तो ये लोग किन्नर किम पुरुष भी गाने लगे, वहां जुट गए और सब भगवान की प्रशंसा करने लगे, किम पुरुष किन्नर यक्ष राक्षस पक्षी सब। ये नहीं कि वहां भगवान का अवतार हुआ है तो बलि महाराज के समाज में शोक छा गया, अब क्या होगा, सभी यक्ष राक्षस भी प्रसन्न हैं, भगवान आए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आनंद में गा रहे हैं, यक्ष राक्षस सुपर्णा पक्षीगण भुजग नागगण, भुजग उत्तमा श्रेष्ठ श्रेष्ठ नागगण वासुकी आदि सब अपना फन उठाकर नाच रहे हैं आनंद से, सब जगह खुशी मनाई जा रही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सब जा करके वही अदिति जी के आश्रम पर ही नाच रहे हैं, जो जहां है वही नाच रहा है, सबको खुशी है। गायंतो ति प्रशंसंतो नृत्यंतो विबुधानुगा आदित्या आश्रम पदम कुसुमयी समवा किरण विबुध अनुगा नृत्यंत, देवताओं के अनुचर नाचने लगे, गायंत इति अति गाने लगे और भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, प्रशंसंत आदित्या आश्रम पदम कुसुमयी समवा किरण, उन लोगों ने अदिति के आश्रम पर इतना पुष्प गिराया, इतना पुष्प गिराया कि कुसुमयी सम अवाकिरण, कुसुमयी सम अवाकिरण का मतलब है एकदम ढक गया, कुसुम से पुष्प से वो आश्रम ही पूरा पूरा ढक गया, बहुत ज्यादा पुष्प गिराए। तो अब देखिए ऋषियों की स्थिति, कश्यप जी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। दिष्ट्वादितिस्तम निज गर्भ संभवम परम पुमांसम मुदमाप विस्मिता गृहीत देहम निज जोग मायया प्रजापति शाह जयति विस्मिता। जब कश्यप जी देखे कि भगवान अदिति के गर्भ से प्रकट हैं तो उनको बड़ा आनंद आया, विस्मिता मुदम आप, इतना आनंद आया, एक तो आश्चर्य हुआ कि भगवान मेरे पुत्र बनकर आ गए, बहुत आश्चर्य हुआ और आश्चर्य के साथ परमानंद हुआ, विस्मिता मुदम, आश्चर्य भी हुआ आनंद भी हुआ। इसके बाद प्रजापति प्रजापति कश्यप निज जोग माया गृहित देहम विस्मितः, इस प्रकार भगवान के विस्मिता विस्मितः दो बार कहा गया है, एक बार भगवान के को देखकर आनंद के साथ चकित हुए, अरे भगवान आए हैं, दिष्टवा दितिस्तम अदिति के द्वारा तम उनको परम पुरुष को परम पुमानसम निज गर्भ संभव, देखते हैं कि अदिति अपने गर्भ में धारण की इस परम पुरुष को, यह हमारे पुत्र के रूप में आए हैं, यह देखकर मुदम आनंद में भर गए और वह मुदम विस्मिता मुदम आश्चर्य में आनंदित हुए। जानते थे, पहले से जानते थे कि भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं, भगवान पुत्र बनकर आएंगे, कश्यप जी को पहले से पता है, फिर भी एकाएक भगवान आ गए तो एक संभ्रम के साथ आश्चर्य के साथ आनंद हुआ। आनंद तो पहले से था कि भगवान पुत्र बनेंगे, लेकिन आ गए, जिनका इंतजार हो रहा था वो आ गए तो एक हड़बड़ाहट, एक संभ्रम हुआ, और उस संभ्रम के साथ कहते हैं विस्मिता मुदम परमानंद को प्राप्त हुए कश्यप जी, और निज जोग माया गृहित देहम विस्मिता, भगवान अपनी जोग माया से अंतरंगा माया के द्वारा शरीर धारण किए हैं, प्राकृत शरीर नहीं है, यह देख करके विस्मित चकित हो गए, और चकित होकर विस्मित होकर के कहने लगे जय इति आह जयेति, जय हो प्रभु आपका जय हो, इस तरह से कश्यप जी बोलने लगे जय हो, उनका स्वागत करते हैं, उनके आगमन पर खुशी व्यक्त करते हैं। यद तद बपुर भाति विभूषणायुधैरव्यक्त छिद व्यक्त मधार यद हरि बभूवते नैव स वामनो बटुः सम्पश्यतो दिव्य गतिर यथा नटः। अब श्री भगवान के विष्णु रूप एकाएक किस रूप में परिवर्तित हो रहा है इसको वर्णन कर रहे हैं। हरि अव्यक्त चिद व्यक्तम, जो श्री भगवान अव्यक्त हैं, सबको दिखाई नहीं देते लेकिन सर्वत्र हैं, जो चित स्वरूप हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो साधारण नहीं है, जड़ नहीं है, कभी प्रकट होते हैं कभी अंतरिक्ष हो जाते हैं, तो यह सब चिन्मय स्वरूप हैं। हरि ही श्री हरि व्यक्तम अव्यक्त चित, अव्यक्त चिद व्यक्त, चिद व्यक्त का मतलब जो चित स्वरूप है, खाटी चिन्मय है, ज्ञानमय है, चिन्मय का अर्थ है चेतन ज्ञानमय, कोई जड़ता नहीं, भगवान के शरीर में कोई जड़ पदार्थ नहीं लगा है, एकदम प्योर चिन्मय तत्व है। चिन्मय का मतलब ज्ञानमय, जो सतमय, सत चित आनंद, भगवान के शरीर इन तीन पदार्थों से बना है, सत चित आनंद, सत मतलब जिनकी सत्ता परमानेंट है, अनादि काल से अनंत काल तक जो रहते हैं उनको सत कहते हैं, और चित का अर्थ है जो संपूर्ण ज्ञान से युक्त है, अनंत कोटि जीवों के हृदय में क्या हो रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर क्या हो रहा है, प्रत्येक लोक में प्राकृत अप्राकृत किसी भी जगह कहां क्या हो रहा है, जो एक साथ सबका ज्ञान रखते हैं उनको कहते हैं चित। आज जो भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, जो भूत वर्तमान भविष्य को अपने मुट्ठी में धारण करते हैं, जैसा समझे जैसा चाहे वैसा करते हैं, उनको चित कहते हैं। और आनंद, केवल आनंद, केवल सुख जिनके स्वरूप में है, कहीं दुख का नामो निशान नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख की अनुभूति नहीं, उनको कहते सच्चिदानंद। तो वह सच्चिदानंद स्वरूप कभी अव्यक्त रहता है हम लोगों के सामने, कभी व्यक्त होता है, प्रकट होता है, कभी अव्यक्त। तो अव्यक्त चित, चित व्यक्त, जो चित स्वरूप है, वही भगवान स्वयं अव्यक्त रहने वाले प्रभु जब प्रकट हुए, जत विभूषण आयुधई भाति बपु अधारयत, जब वो परम कांति के साथ आभूषण धारण किए हुए अनेक आयुधों के साथ, शंख चक्र गदा कमल के साथ प्रकट हुए थे, और सब देवता देख रहे थे, अदिति जी देख रही थी, जय हो बोल रहे थे, भगवान उसी शरीर के साथ सबके सामने तत्तेन एव संपश्यत, उन लोगों को देखते देखते कश्यप और अदिति के सामने संपश्यत, सम्यक रूप से दिखते दिखते ही बामना बटु बभुआ, अचानक बामन हो गए। ऐसा नहीं कि अब पर्दा लगाओ थोड़ा ड्रेस चेंज करेंगे देखते देखते बामना बटु बभुआ यथा नट दिव्य गति, जैसे नट अपना वेश बदल लेता है, क्यों भगवान की लीला अद्भुत है, दिव्य गति, यथा नट जैसे नट अपना वेश बदलता है, वैसे ही भगवान अचानक सबके सामने देखते देखते ही अपना रूप बदल दिए। अभी क्या क्या पहने थे, मुकुट पहने थे, शंख चक्र कुंडल धारण किए थे, मुकुट धारण किए थे, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए थे, माला पहने थे, पीताम्बर धारण किए थे, सुंदर मणियों का बेल्ट पहने थे, बहुत सुंदर रूप का वर्णन हुआ, अभी चतुर्भुज रूप था, शंख चक्र कमल गदा धारण किए थे, और सारे रूपों के साथ विभूषणायुधई आभूषण और आयुधों को जो नित्य प्रकाशित करते रहते हैं, जो सदा उनके स्वरूप में सब है, जब जरूरत है तो उसको अभिव्यक्त करते हैं, नहीं तो तिरोहित कर लेते हैं। अधारयत प्रकट किए थे, अव्यक्त एवं चित स्वरूप को कृपा पूर्वक प्रकाशित किए थे। ते नैव उसी नित्य सिद्ध स्वरूप से किसी प्रकार के माइक मूर्ति का प्रयोग नहीं करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसी दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप में चेंज हो गए अचानक। ये नहीं कि एक दूसरा मिट्टी का या पत्थर का या किसी पदार्थ का मूर्ति बनाया गया, नहीं, उसी सच्चिदानंद स्वरूप से भगवान का हाथ पैर श्रीमुख सब कुछ सचित आनंद का है, कहीं से प्राकृत मटेरियल नहीं लगाया गया है। उनके शरीर में और आत्मा में कोई भेद नहीं है, हम लोगों के शरीर में और हम में भेद है। जो अपना स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, वो चिन्मय है, नित्य है, अप्राकृत है, दिव्य है, लेकिन जो शरीर मिला है वो प्राकृत है, जड़ है, अचेतन है और अनित्य है। इसका नाश होगा, इसमें कोई भी चेतन क्षमता नहीं है, इसमें कोई सौंदर्य अपना नहीं है, इसके अंदर जो मन बुद्धि अहंकार है वो भी जड़ है, उसमें आत्मा की उपस्थिति से सब कुछ होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 8 तत्व हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 तत्वों से प्रकृति बनी है, तो 5 तत्व स्थूल हैं और 3 तत्व सूक्ष्म हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये स्थूल तत्व है जो दिखता है, सूक्ष्म तत्व है मन बुद्धि और अहंकार। और ये मन बुद्धि अहंकार जब जड़ शरीर छूटता है स्थूल शरीर, तो इसको छोड़कर जब आत्मा दूसरे शरीर में जाता है या दूसरे लोकों में, जो अंतः शरीर है मन बुद्धि अहंकार वो साथ रहता है, खास करके नरक में जाते समय साथ रहता है, और उसको जातना शरीर अलग से दे दिया जाता है, और वही मन वही बुद्धि रहती है, और उसी से जमराज के दूत पूछते हैं, याद कराते हैं, तुमने ऐसा पाप किया था ना इस दिन इस टाइम यहाँ इस स्थान पर, याद है, उनको याद भी दिलाते हैं और पीटते हैं, और वह उसी मन से उसी बुद्धि से याद करता है। हाँ, और याद करता है, और जातना शरीर में उसको खूब तंग करते हैं, दुख देते हैं और दुख की अनुभूति करता है। जड़ शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा, और जब आत्मा मुक्त होता है मुक्तावस्था को, तो ये जड़ शरीर भी छूटता है और सूक्ष्म शरीर भी छूटता है, तब वो अपने नित्य स्वरूप सच्चिदानंदमय रूप में वैकुंठ जाता है। वहां पर कोई प्राकृत वस्तु नहीं जा सकती। ममई वांसो जीव लोक जीव भूत सनात, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एकदम हूबहू उसी का अंश है भगवान का ही, लेकिन गुण में कोई अंतर नहीं, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं हम में और भगवान में, क्वांटिटी में अंतर है। हम सूक्ष्म है, वो विभू है, अनंत लहरों के साथ समुद्र है, उसमें एक बिंदु जल निकालकर अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो जो अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक बूंद जल में है, वही अनुपात अपार जल राशि में है, कोई अंतर नहीं। लेकिन क्वांटिटी में अंतर है कि ये बूंद सीमित है और वो अनंत है। तो इसी प्रकार भगवान के सब कुछ सत्य चित आनंद अनंत है, विभू है, और हम अणु हैं, जीव अणु है। जीव माया के परवश हो जाता है, माया के अधीन हो जाता है, माया के फंदे में पड़ सकता है, लेकिन भगवान मायापति हैं, यह अंतर है। जीव मायाधीन है, माया के अधीन हो जाता है, और भगवान मायापति हैं। इसीलिए कहते हैं जब हमारे शरण में आ जाओगे तो ये माया छोड़ देगी। मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे। तो इस प्रकार भगवान उसी रूप से बिना परिवर्तन किए ही, किसी माइक मूर्ति का प्रयोग नहीं किए, बदल गए। तो यह भगवान का बदलते हुए रूप के प्रति सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह जो बदलना है वो दिव्य गति है, परमाश्चर्यमय। नट जैसे किसी बिना परिवर्तन किए ही दूसरा स्वरूप प्रकाशित कर दे, तो उसी प्रकार श्री हरि उसी चिन्मय मूर्ति द्वारा वामनाकृत शरीर प्रकट कर दिए। कभी कभी जो कलाकार हैं, नृत्य करते हैं, खासकर उड़ीसा आदि में, तो एक ही ड्रेस में ड्रेस भी चेंज नहीं करते, लेकिन विविध आकृति से नृत्य करते हैं और विविध भावों को प्रकट कर देते हैं, कभी किस रूप में कभी किस रूप में। जैसे वो अपने दिव्य कलाकारिता से विविध भावों को एक ही रूप में प्रकट कर देते हैं, जाकर अलग पर्दा में श्रृंगार नहीं करते, उसी एक ही मंच पर, एक ही श्रृंगार में, एक ही ड्रेसिंग में वह विविध भाव प्रकट करते हैं अपने कला से। उसी प्रकार यहाँ ये भाव है, वामनाकृत शरीर प्रकट कर दिए, चिन्मय श्री विग्रह। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ नट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ही अभिनेता, एक ही व्यक्ति होते हुए भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति को करता है, वैसे ही श्री भगवान रूप बदलते रहते हैं। अद्वैत मच्युत मनादि मनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव जौवनम च वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि। इस श्लोक को कोट करके प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान का वो सब कुछ अद्वितीय है, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत, वो रूप अद्भुत है। आद्यम पुराण पुरुषम, वो पुराण पुरुष है, आदि पुरुष है। पुराण पुरुष है तो शंका हो सकती है तब तो बूढ़े हो गए होंगे, बहुत काल से हैं तो कितना दिन तक जवान रहेंगे। 50-60 वर्ष के बाद ही बुढ़ापा आ जाती है, बाल काला से उजला हो जाता है, आंख से दिखाई नहीं देता, पैर से चल नहीं पाते, तो यही आरोप उन पर भी कर देंगे तो कहते ना नव जौवनम च, पुराण पुरुष होते हुए भी वो हमेशा जवान रहते हैं, यह तो अद्भुत बात है। तो अद्भुत तो है ही, वेदेश दुर्लभम, ये साधारण बात थोड़े है, वेद के लिए भी दुर्लभ है उनके स्वरूप का वर्णन करना। साधारण लोग नहीं समझे, भ्रम कर जाए तो कौन आश्चर्य है। वेद भी जिनके वर्णन करते करते यही कहना पड़ता है, न इति न इति, नेति नेति कही वेद पुकारे, न इति न इति, इनके रूप का अंत नहीं है, इनके सौंदर्य का अंत नहीं है, इनके गुणों का अंत नहीं है, इनके वर्णन का अंत नहीं है। शेष थक जाते हैं, ब्रह्मा थक जाते हैं, शिव थक जाते हैं, सरस्वती थक जाती है इनके गुणों का वर्णन करते हुए, फिर भी यह नहीं कह पाते कि अब हो गया फाइनल ना। तो इस तरह वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त, वेद के लिए दुर्लभ है लेकिन अपने भक्तों के लिए अदुर्लभ, जब भक्त चाहे तब प्रकट। भक्तों के लिए दुर्लभ नहीं है, वेद के लिए दुर्लभ है। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त, अपने भक्तों के लिए जिनका स्वरूप दुर्लभ नहीं है, चाहे तो बेटा बना लें, चाहे तो रथ खकवा लें, कुछ भी कर लेते हैं, चाहे तो गोद में खिलाते हैं, चाहे तो नौकर बना लेते हैं। बलि महाराज की चाह नहीं थी फिर भी नौकर बन गए, शौक से बन जाते हैं, तो उनके लिए दुर्लभ नहीं है। ऐसे गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि, ऐसे गोविंद आदि पुरुष का हम भजन करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हो गए। अब जब भगवान प्रकट हुए वामन के रूप में, तम बटु वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। तम वामनम बटुम दृष्ट्वा, भगवान के उस वामन स्वरूप को देखकर महर्षयः मोदमाना, जो महर्षि लोग थे, ऋषि लोग, कश्यप आदि ऋषि जो वहां उपस्थित थे, सबको बड़ा आनंद आया। प्रजापतिम पुरस्कृत्य, प्रजापति, प्रजापति यहाँ कश्यप जी के लिए है। कश्यप जी को आगे करके कर्माणी कार्यामासु, उनको आगे करके जात कर्म आदि संस्कार करवाने लगे। कर्माणी जात कर्मादिनी, कर्माणी का अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जन्म के समय कुछ संस्कार होता है उसको कराया गया है। और चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कर्माणी का अर्थ चूड़ो उपनयन आदिनी, जात कर्म भी हुआ और उनका उपनयन भी उसी समय हुआ, जनेऊ आदि। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार जब किसी ब्राह्मण परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो उस संतान को सर्वप्रथम जात कर्म कराया जाता है, जन्म के समय ही कुछ संस्कार है कराया जाता है, ये संपन्न किया गया। कश्यप जी ब्राह्मण है तो उनके यहाँ जन्म लेने के कारण भगवान का जात कर्म कराया गया। अतः वामन देव के प्राकट के तुरंत बाद जन्म वाला संस्कार के साथ साथ उपनयन संस्कार भी कराया गया है, जो कि कुछ साल के बाद होना चाहिए, लेकिन उसी समय तत्काल ऋषियों के मन में आया कि इनका उपनयन संस्कार भी कर दिया जाए। तो सब लोग मिल करके उपनयन संस्कार आदि किए, वहां ऋषि ब्राह्मण सब समाज जुटे हुए थे। और इसके बाद भगवान वामन रूप में प्रकट हुए, छोटा रूप में। अब वो मुकुट सुकुट नहीं था कुछ भी, शंख चक्र गदा सब रख दिए, एकदम ब्राह्मण के लड़का एकदम छोटा बच्चे के रूप में आ गए। तस्योपनीय मानस्य सावित्रीम सविता ब्रवीत बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। तो भगवान प्रकट हुए हैं, तो भगवान के प्राकट्य पर कुछ देना चाहिए। अब वहां उपस्थित लोग कुछ भेंट दे रहे हैं भगवान को, तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवी स्वयं सविता उनको गायत्री मंत्र का उपदेश की। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम, देव गुरु बृहस्पति जी ने उनको जगु पवित्र पहनाया, गुरु हैं, भगवान के भी गुरु हैं। कश्यप मेखला मदात, कश्यप जी ने मेखला दिया। ददउ कृष्णा जिनम भूमि दंडम सोमो वनस्पति ही कौपिना छादनम माता दौ छत्रम जगतः पते। जगतः पते, जगत के पति को दिया जा रहा है, सब कुछ उनका है। लेकिन देखिए एक सिस्टम है, एक विधान है कि प्रभु को देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे कहकर रह जाते हैं कि जो सबको खिला रहे हैं, सबको देते हैं, उनको क्या देना है, उनको किस बात की कमी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भगवान चाहते हैं कि हमको दिया जाए। भगवान का ही सब कुछ है, ठीक है, लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी वस्तु उनको दिया जाए। अगर कोई पिता बाजार से कोई फल या मिष्ठान लेकर आवे घर में और अपने बच्चे को दे दे, कह लो बेटा इसको खाओ, तो बेटा को दे और बेटा ले ले हाथ में लेकर बहुत खुश हो जाए और खुश होकर कहने लगे कि पिताजी आप पहले ले लीजिए, कुछ आप भी लीजिए, तो कहते नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, नहीं नहीं आप थोड़ा सा लीजिए, आप जब तक नहीं लेंगे मैं नहीं खाऊंगा। तो अगर ऐसा कोई बेटा कहता है तो बतलाइए बाप को कितनी खुशी होगी, जरूरत हो या ना हो, लेकिन उस पुत्र के भाव से पिता कितना प्रसन्न होगा। और कभी कभी क्या होता है कि बाप ही लाकर बेटा को दे देता है और देने के बाद कहता है मुझे भी थोड़ा दो ना, अब लेकर भागने लगता है, अरे दो नहीं, अब वो भागती, कितना दुष्ट है। पुत्र के प्रति पिता नाराज होता है कि नहीं, सब कुछ देने के बाद भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयक्षति, मुझे श्रद्धा से प्रेम से आत्मीयता से मुझे दो, बहुत आइटम बनाकर खा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पुष्प दे दो, फल दे दो, पत्र दे दो, तुलसी पत्र वो मुझको दे दो, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन भक्ति से देना चाहिए, श्रद्धा से, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो सब कुछ भगवान की है, वो जगत पति है और जगत पति को दिया जा रहा है, जगत पते। ददउ कृष्णा जिनम भूमि, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया। वनस्पति सोम दंडम, वन के स्वामी चंद्रमा ने उनको छड़ी दिया, डंडा। और माता कौपिन आच्छादनम, माता अदिति ने उनको कौपिन और कटी वस्त्र दिया। आच्छादनम का अर्थ कटी वस्त्र, कौपिन को ढकने वाला। दउ छत्रम ददउ, और आकाश का अभिमानी देवता उनको छत्र दिया, आकाश के जो सूर्य का प्रकाश या बादल वर्षा आदि से न प्रभावित हो इसके लिए छत्र दिया। सब दे रहे हैं। कमंडलुम वेद गर्भ कुशासन सप्तर्षयो विद्दुह अक्षमाला महाराज सरस्वत्य व्ययात्मनः। हे महाराज परीक्षित, भगवान के साथ देखिए कैसे व्यवहार हो रहा है, सब लोग दे रहे हैं। अव्यय आत्मनः, उस अव्यय परमात्मा श्री भगवान को किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन दिया जा रहा है। वेद गर्भ कमंडलु, वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सप्तर्षय कुशान, सप्तर्षियों ने ब्राह्मण के पुत्र को कुश दिया, वो हवन वन में काम आएगा कुश। सरस्वतीम अक्षमालम ददउ, और सरस्वती जी रुद्राक्ष की माला समर्पित की, अक्षमालम। तस्मा इतु पनीता यक्षराट पात्रिका मदात भिक्षाम भगवती साक्षाद उमा दंबिका सती। इति उपनीताय तस्मात यक्षराट पात्रिका मदात, यक्षराज कुबेर जी ने उनको भिक्षा पात्र दिया, एक कटोरा दिया। अब भिखमंगे का ड्रेसिंग चल रहा है तो अब क्या किया जाए, उनके अनुरूप दिए पात्र दिए, जिस पात्र में वो लेकर खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तो उनको भिक्षा पात्र दिए। तो भिक्षा पात्र जब भगवान वामन देव ले लिए, तो सती अंबिका साक्षात अन्नपूर्णा उमा भिक्षा मदात, तो उमा जी स्वयं पार्वती जी ने उनको भिक्षा दिया, सबसे पहला भिक्षा। स ब्रह्म वर्च से नैवम सभाम संभावितो बटुहु ब्रह्मर्षि गण संजुष्टा अत्य रोचत मारिषः एवं संभावितः स मारिषः बटु ब्रह्मर्षि गण संजुष्टाम सभाम ब्रह्मवर्च से न अत्य रोचत। तो इस प्रकार सब लोगों से सम्मान प्राप्त करके श्रेष्ठ बटु वेशधारी श्री भगवान सप्तर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्मतेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए, बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान। भगवान चाहे किसी भी रूप में हो लगते हैं बहुत सुंदर। अरे तो ब्राह्मण बटु के रूप में है, शूकर के रूप में आ गए तब भी बहुत अच्छा लग रहे थे, शूकर रूप की भी स्तुति की गई। मछली के रूप में आए तब भी भगवान सुंदर लग रहे थे, कछुए के रूप में आए तब भी सुंदर लग रहे थे, अब तो ब्राह्मण के रूप में है फर्स्ट क्लास भिखमंगा। और उनको देख करके ऋषि लोग एकदम आनंदित हैं और भगवान अपने ब्रह्म तेज के कारण बहुत सुंदर लग रहे थे। ब्रह्म तेज द्वारा संस्कार करने के बाद वामन देव एकदम ब्रह्मचारी जैसा लगने लगे। अपने तेज के कारण वामन बटु सप्तर्षियों की उस सभा को अतिक्रमण करते हुए सुशोभित होने लगे। जितने तेजस्वी लोग थे सबका तेज समाप्त हो गया। खूब सुंदर सुंदर चेहरे वाले, सुंदर सुंदर रूप वाले इंद्र आदि देवता थे, लेकिन इन सब प्रकाशों का महत्व कब है? जब तक सूर्य सामने नहीं है। नहीं तो जितने मोमबत्ती लालटेन गैस कुछ भी जला दीजिए लाखों करोड़ों, उन प्रकाश पुंजों का महत्व तब है जब तक आकाश में सूर्य नहीं है। अंधकार है तब तो मोमबत्ती का भी महत्व है, लेकिन जब सूर्य आकाश में आ जाता है सामने तो बुझाना भी नहीं पड़ता, सारे प्रकाश पुंज एकदम डीम पड़ जाते हैं, कोई उनका महत्व ही नहीं रहता है। कभी कभी तो प्रकाश जलता है, कोई बल्ब जल रहा है तब तक सूर्य आ गए आकाश में, कोई ध्यान नहीं दिया कि वो लाइट को ऑफ किया जाए, तो इतना सूर्य का प्रकाश फैल गया कि ध्यान भी नहीं जाता कि बल्ब जल रहा है, उसके प्रकाश का पता ही नहीं चलता। तो वैसे ही जहां भगवान प्रकट हो गए तो जितने तेजस्वी लोग थे सबका तेज फीका हो गया। केवल यही नहीं, जब वो बलि महाराज के यज्ञ में पहुंचेंगे तो वहां भी बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों का तेज फीका हो जाएगा। समृद्ध माहितम वहिनी कृत्वा परिसमूहनम परिस्तिर्ज समभ्यर्च समेद भी रज्जुहोद्विज। इसके बाद उन ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार करके स्थापित अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके, परिसमूहन परिस्तिर्जम कृत्वा समभ्यर्च पूजा किए और समृद्धि अजिहोत समिधाओं से हवन प्रारंभ किए। भगवान वामन देव के द्वारा हवन कराए, पहले वहीं पर अदिति जी के भवन के सामने ही हवन हुआ। ब्राह्मण रूप में आए हैं तो उनके द्वारा हवन कराया गया। वहीं पर हवन का कार्य चल रहा था तब तक कहीं कानाफूसी चर्चा हो रही है, ब्राह्मण समाज जुटा हुआ है, ऋषि मुनि कह रहे हैं कि बलि बहुत बड़ा यज्ञ कराया है, उसका सौवां यज्ञ पूरा होने वाला है। कोई पूछ रहा था कि बलि का कौन अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, तो किसी ने कहा कि सौवां यज्ञ चल रहा है। अच्छा, तो उसी में वामन देव भी सुन लिए। श्रुत्वा अश्वमेधैर् यजमान मूर्जितम् बलिम् भृगूणामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिल सार संभृतो भारेण गामसन्नमयन् पदे पदे। श्रुत्वा, उसी समय जिस समय वामन देव हवन कर रहे थे उसी समय श्रुत्वा सुने, क्या सुने? उर्जितम बलिम भृगुणाम उपकल्पितई अश्वमेधई यजमानम, सब प्रकार के सामग्रियों से संपन्न और उत्कृष्ट भृगुवंशियों के आदेश के अनुसार बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, यह सुने वामन देव। ततः तत्र जगाम, भगवान वामन देव पूछे अच्छा बलि का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, हाँ तो वहां चलना चाहिए, ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मणों को यज्ञ में जाना चाहिए, साधु महात्माओं को कोई निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। भागवत कथा चल रही है, कान में आवाज आ गया कि कथा चल रही है तो आ जाना चाहिए, निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। जब भगवान वामन देव को पता चल गया तो यज्ञ के लिए तैयार हो गए, जाना चाहिए। अखिल सार संभृत, समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भगवान जब बलि के यज्ञशाला की ओर बढ़ने लगे तो भारेण गाम पदे पदे सन्नमयन, जब वो चलने लगे तो उनके एक एक पग से पृथ्वी झुकने लगी, पृथ्वी एकदम प्रसन्न हो गई, भगवान अब चल रहे हैं उसके ऊपर, यह सौभाग्य पृथ्वी को प्राप्त हुआ, इसलिए पृथ्वी आनंद में हिलने लगी। तो यदर्थम बटु बभु तदाह, जब सुने स्तुत्वेत्यादि जावत समाप्ति, अब यहाँ से अध्याय समाप्ति तक वामन देव रहेंगे, पूरा 23 अध्याय तक अब वामन देव यहाँ से प्रारंभ हो गए, अब हीरो भगवान वामन देव है। और वहाँ भृगु वंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य आदि यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान अखिलेन सारेण बलेन संभृत, संपूर्ण भार बल को लेकर चल रहे हैं, छोटा रूप है लेकिन भगवान के एक एक पद पर पृथ्वी झुक रही है। पृथ्वी के झुकने का कारण यह नहीं है कि बहुत भार बढ़ गया, वो आनंद में पृथ्वी हिलने लगी, आज भगवान हमारे ऊपर पैदल चल रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है, और भगवान देवताओं का कार्य पूरा करेंगे, ये त्रिलोकी का राज्य इंद्र को देंगे, इस खुशी में एकदम आनंदित हो गई। तो इस प्रकार भृगुवंशी ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ के द्वारा बलि को अति समृद्ध बना दिए थे, उर्जितम बलिम, बलि का तेज बढ़ चुका था, उस बलि के पास भगवान जा रहे हैं। अखिल भार संभृत का श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती अर्थ करते हैं कि अखिलई सारई विवेक धैर्य पांडित्यादि भी संभृत पूर्ण वामन देव, सब कुछ धारण कर लिए थे, सारा ज्ञान सारा विवेक सारा धैर्य सब कुछ धारण करके चल रहे थे, बहुत बड़े धैर्य का परीक्षा लेने जा रहे हैं बलि का। भारेण कृपई स्वर्जादि गरिमाम गाम पृथ्वीम सम्यक नमस्कारम कारयन, भगवान के इस स्वरूप को कि भगवान कृपा करने के लिए बलि के ऊपर जा रहे हैं, पृथ्वी भगवान के इस व्यवहार से इतना आनंदित हुई कि उनको नमस्कार करने के लिए झुक गई, झुकने लगी। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान की कृपा का अनुभव करके कि देखो इनकी कृपा, ये कृपा करके हमारे ऊपर चल रहे हैं, ये बलि के ऊपर कृपा करने जा रहे हैं, इंद्र के ऊपर कृपा करेंगे, और ये अपने कृपा से गंगा को अवतरण करा के संपूर्ण जन समाज को कल्याण करेंगे, एक कृपा सिंधु हमारे ऊपर चल रहे हैं, इनका अवतार हुआ है, इसलिए एकदम पृथ्वी झुक गई। तम नर्मदाया तट उतरे बले युजस्ते भृगु कक्ष संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुतमम् व्यचक्ष तारा दुदितम यथा रविम। नर्मदाया उतरे तटे भृगु कक्ष संघके तम भृगवः क्रतुतमम् प्रवर्तयन्तः। नर्मदा के उत्तर तट पर, कुछ लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में जो नर्मदा नदी है उसके उत्तर तट पर भुरुच इस समय जिसका नाम है, वहां पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, और कुछ आचार्यों का कहना है कि यह नर्मदा स्वर्गीय लोक में है, जैसे गंगा यहाँ है वैसे स्वर्गीय गंगा है दिव्य गंगा, वैसे वहां भी नर्मदा नदी है उस नर्मदा के तट पर। चाहे जो भी हो इसमें थोड़ा मतांतर है, लेकिन भृगु कक्ष नामक एक सुंदर स्थान था जहाँ भृगुवंशी ब्राह्मण लोग यज्ञ तप आदि करते थे, उनके लिए पवित्र स्थान था नर्मदा के उत्तर तट पर, वहीं पर तम भृगवः क्रतुतमम्, क्रतु यज्ञ को कहते हैं, उत्तम श्रेष्ठ यज्ञ कर रहे थे भृगुवंशी ब्राह्मण, प्रवर्तयन्तः अनुष्ठान करा रहे थे, बलि के द्वारा उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे, उस जगह का नाम ही हो गया था भृगु कक्ष, भृगुवंशियों द्वारा वो सम्मानित जगह था, वहां पर अनुष्ठान करा रहे थे। बले यह ऋत्विज ते आरात व्यचक्षत रबिम उदितम यथा, जब भगवान वामन देव उस भृगु कक्ष की ओर चले तो दूर से ही दिखाई दिए, दूर से ऋत्विज लोग ब्राह्मण लोग यजमान बलि सब लोग देखने लगे दूर से आते हुए वामन देव को, वहां जितने ब्राह्मण थे यज्ञ करने वाले सब देख रहे हैं, एक प्रकाश पुंज बलि महाराज के यज्ञ में लगता है एक साक्षात सूर्य देव प्रकट हो गए आ रहे हैं, दूर से देख लिए। उनको ऐसा लगने लगा कि मानो रविम उदितम जथा, साक्षात सूर्य देव ही उदय हो रहे हैं, वहां आ रहे हैं, ऐसे भगवान वामन देव के शरीर से तेज निकल रहा था। सबकी दृष्टि भगवान वामन देव की तरफ पड़ गई, सब देखने लगे, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। तरित्विजो यजमानः सदस्या हतस्तिशो वामन तेजसा नृप सूर्य किलायात्युतवा विभावसु सनत कुमारोथ दिदीक्षया क्रतो। हे महाराज, वामन तेजसा तेरित्विज यजमान सदस्य हत त्विष, वामन देव जब वहाँ यज्ञ मंडप में पधारे तो वहाँ पर बड़े बड़े तेजस्वी ब्राह्मण, एक से एक तपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी सन्यासी वहाँ उपस्थित थे, यज्ञ करा रहे थे। बड़े तेजस्वी लोग थे, बड़ा जस फैला हुआ था, सुंदर शरीर था, सब हत त्विष, सब निस्तेज हो गए। भगवान वामन देव के उपस्थित होते ही सारा प्रकाश डिम, कोई अब उसमें प्रकाश नहीं है। किला क्रतो, वे लोग सोचने लगे सब लोग कि दिदीक्षया सूर्य विभावसु अथवा सनत कुमार उत्वा आया थी। सब लोग सोचने लगे, भिन्न भिन्न तरह से सोच रहे हैं, क्या सूर्य देव आ रहे हैं यज्ञ देखने? अरे नाना, सूर्य क्यों आएंगे? तब विभा वसु साक्षात तो अग्नि देव आ रहे हैं। अग्नि तो प्रकट किया गया है हवन करने के लिए, लेकिन लगता है कि साक्षात तो अपने मूल स्वरूप में अग्नि देव आ रहे हैं, तब इतना प्रकाश दिखाई दे रहा है। अग्नि देव है, सूर्य देव है। कहते नहीं नहीं, अग्नि देव नहीं है, सूर्य देव भी नहीं, छोटा दिख रहे हैं। लगता है कि सनत कुमार है, चारों एक साथ चलते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कोई एक हो, वो आ रहे हैं। सनत कुमार उतवा आया थी, सब अंदाजबाजी कर रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, अग्नि आ रहे हैं कि सनत कुमार आ रहे हैं। सभी ऋत्वी यजमान सदस्य आदि बड़े बड़े विचारक विचार कर रहे हैं, कौन आ रहे हैं। इत्थम सशिष्ये भृगेश्व ने कधा वितर्क मारो भगवान सवामनः छत्रम सदंडम जलजम कमंडलुम विवेश बिब्रद हय मेधवाटम। तो भृगुषु सशिष्यु इत्थम अनेकधा वितर्क मारा, भृगु के पुत्र भृगुषु शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ सशिष्यु इत्थम अनेकधा वितर्क मारा, अपने शिष्यों के साथ शुक्राचार्य जी विचार कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। एक से एक तेजस्वी ब्राह्मण है शुक्राचार्य के शिष्य, सब अनेक प्रकार के कल्पनाएं कर रहे हैं, क्या है, कौन है, क्या करने आ रहे हैं, आखिर सूर्य देव क्यों आएंगे, क्या बात है, अग्नि देव क्यों आएंगे। तो अग्नि देव हो सकता है कि प्रसन्न होकर साक्षात हविष धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आ रहे हो। नहीं नहीं, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनत कुमार हैं, ये लोग प्रसन्न होकर बलि के यज्ञ को देखने आ रहे हैं। तब तक सदंडम छत्रम जलजम कमंडलुम, उसी समय हाथ में दंड छत्र और जल से भरा हुआ कमंडल, खाली कमंडल लेकर नहीं चलना चाहिए, भगवान वामन देव जल से भरा हुआ कमंडल लिए हैं, कभी जरूरत पड़ सकता है, शुद्धि की जरूरत पड़ जाए या पानी पीने की जरूरत पड़ जाए तो जल से भरा हुआ कमंडल रहना चाहिए ब्राह्मणों के हाथ में। तो कमंडल जल से भरा हुआ कमंडल है। बिभ्रत स वामन भगवान है मेधवाटम विवेश, उस अश्वमेध जग के मंडप में प्रवेश कर गए, आ गए, बहुत दूर से देखकर कल्पना कर रहे थे, एकदम सामने आ गए। मौंजा मेखलया वीतम उपवीता जिनोतरम जटिलम वामनम विप्रम माया माणवकम हरिम, कमर में मुंज की मेखला पहने हुए हैं, गले में जगो पवित्र है, कोई कुर्ता नहीं पहने हैं, भगवान तो ऐसे ही सुंदर चमकते हैं, ऐसे उनका शरीर दिखाई दे रहा है, जनेऊ भी दिख रहा है, उत्तरीय के रूप में मृग चर्म है और सिर पर जटा है, जो अवतार के समय वेश का वर्णन हुआ वो नहीं है, जटा बंधा हुआ है सिर पर, जनेऊ धारण किए हैं, उत्तरीय के रूप में मृग चर्म है। वामनम विप्रम माया माणवकम हरिम, अपनी बौना वेश में भगवान वामन देव अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए श्री हरि बलि महाराज के यज्ञ में उपस्थित हुए। प्रविष्टम विक्ष भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः प्रत्यगेणम समुत्थाय संक्षिप्ता तस्य तेजसा। जब उनके यज्ञ मंडप में भगवान प्रवेश किए, प्रविष्टम वीक्ष्य और ते भृगवः वीक्ष्य, वे भृगुवंशी शुक्राचार्य आदि जब भगवान को देखे तो सशिष्या तस्य तेजसा संक्षिप्ता, अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित हो गए, निष्प्रभ हो गए, किसी में अब कुछ तेज नहीं दिख रहा था। स अग्नि भी समुत्थाय प्रत्यगृहण, सभी लोग अग्नि के साथ जितने लोग वहां उपस्थित थे, बड़े बड़े ब्राह्मण, सभी खड़ा होकर भगवान वामन देव का सत्कार किए, स्वागत किए। जितने लोग यज्ञ में उपस्थित थे सभी खड़ा हो गए। शुक्राचार्य जी अपना आसन छोड़ दिए और ब्राह्मण छोड़ दिए, अग्नि के साथ कहते हैं स अग्नि भी, अग्नि में जो हवन किया जाता था वो भी मानो भगवान का स्वागत कर रहा है प्रकट रूप में। सब लोग खड़ा होकर भगवान वामन देव का सत्कार किए। यजमान प्रमुदितो दर्शनीय मनोरमम रूपानुरूपा वयवम तस्मा आसन माहरत। यजमान प्रमुदितो दर्शनीय मनोरमम, वहां यजमान बलि महाराज। अब पंडित लोग तो उठ गए, यजमान का क्या स्थिति हुई इसका वर्णन कर रहे हैं कि यजमान प्रमुदितो, यजमान बलि महाराज बहुत आनंदित हुए, साधारण आनंद उनको नहीं मिला। क्योंकि दर्शनीय मनोरमम, देखने लायक मनोरम, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनोरम रूप प्रकट हुआ है, मन को एकदम खींचने वाला देखने लायक रूप, वास्तव में आंख की सफलता प्राप्त हो गई, आज भगवान यज्ञ में आ गए। ऐसे पहचान नहीं रहे हैं बलि महाराज के भगवान है, लेकिन रूप बहुत सुंदर है। भगवान किसी भी रूप में आवे तो बहुत सुंदर लगते हैं, रूप है एकदम भिखमंगे का लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। मनोरम दर्शनीयम तस्माम यजमान प्रमुदितः आसनम आहरत, बड़ी आनंद में खड़ा होकर उनको बैठने के लिए उत्तम आसन दिए। यजमान है, उनका कर्तव्य है आने वाला का स्वागत करना, तो भगवान वामन देव के लिए आसन दिए। स्वागते नाभिनंद्याथ पादौ भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरमम। बलि स्वागतेन अभिनंद्य भगवतः पादौ अवनिज्य अथ मुक्त संगम मनोरमम अर्चयामास। बलि स्वागत के वाक्यों से अभिनंदन किए, आप भले पधारे, बहुत अच्छा हुआ आप कृपा करके हमारे यज्ञ में आए। ब्राह्मण जानकर ही स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बड़े सुष्टु वाक्य में बोल रहे हैं कि हे प्रभु भले पधारे, आपका आगमन हुआ, हमारा धन्य भाग है। भगवतः पादौ अवनिज्य, और भगवान वामन देव को उचित आसन देकर उनके चरणों को सबसे पहले पखारे। बलि महाराज तो सबसे पहले चरण पखार लिए, धो लिए, और इसके बाद अथ मुक्त संगम मनोरमम अर्चया मास, फिर मुक्त संग मनोरम भगवान वामन देव की पूजा किए। मुक्त संग मनोरमम मतलब एक साधारण आसक्त व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति की बात क्या है, जो लोग मुक्त हैं आत्मा रामस्य मुनयो, ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो रूप मनोरम है उस श्री भगवान की पूजा करने लगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मुक्त संगानाम आत्मा रामाराम मनोरमयति इति तम। संसार की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं, परम विरक्त है, ऐसे लोग भी जिनके स्वरूप को देख कर विभोर हो जाते हैं वो प्रभु श्री भगवान। तो बलि महाराज देख लिए और उनका चरण पखारने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अथ मुक्त संगम मनोरमम, मुक्तों के भी चित्त को खींचने वाले श्री भगवान का चरण पखारे बलि महाराज। आते ही आसन दिए और चरण धोए, चरण धोवन की महिमा को गा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तत्पाद शौचम जनकल मसापहम सधर्म बिन्मूर्ण दधात सुमंगलम यद देव देवो गिरिशश्चंद्र मौली दधार मूर्णा परयाच भक्त्या। तत्पाद शौचम सुमंगलम जनकलमसापहम, भगवान के श्री चरणों के धोवन परम मंगलमय है, उससे जीवों के सारे पाप धुल जाते हैं। जनकलमसापहम देव देव चंद्रमौली गिरिशह जत परमया भक्त्या मूर्ण्या च दधार। जिस चरण जल को स्वयं देवाधि देव भगवान चंद्रमौली जिनके सिर पर चंद्रमा रहते हैं वो चंद्रमौली भगवान शंकर अत्यंत भक्ति भाव के साथ अपने सिर पर धारण किए, उसी चरण जल को आज बलि प्राप्त किया है। चरण जल की महिमा गा रहे हैं कि जिन चरण के धोवन के लिए शिव जी ललायत रहते हैं, सिर पर धारण करते हैं, उनको आज सधर्मवित मुदनी अदधात, उसी चरण धोवन को अपने सिर पर लिए, आचमन किए, मुख में लिए और अपने स्वजनों को दिए, उस जल से जग मंडप में या जहां तहां छिड़के, सबसे पहले अपने मस्तक पर रखे, सधर्मवित मुदनी अदधात, दधार मुदन्या पर्याच भक्त्या, बड़ी भक्ति के साथ, अत्यंत भक्ति के साथ अपने सिर पर धारण किए। भगवान जानकर नहीं धारण कर रहे हैं, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जानकर धारण कर रहे हैं, लेकिन अनजान में भी वो भगवान हैं, जिनके चरण जल को शिव जी चाहते हैं, उसी चरण जल को बलि प्राप्त किए। तब बलि चरण धो लिए, तब स्वागत के कुछ शब्द बोलते हैं। बलि रुवाच, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते, ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात मन्ने त्वार्ज बपुर धरम। बलि महाराज ने कहा, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, बहुत अच्छा हुआ आप आए, ते स्वागतम, आपका स्वागत है, तुभ्यम नमः, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, ते किम करवाम, आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ, सारा यज्ञ का कार्य बंद हो गया, सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ एक देखने लायक, सब देख रहे हैं, सारा काम बंद करके, कहते हैं ते किम करवाम, मैं आपके लिए क्या करूं, आर्ज ब्रह्मर्षिणाम तपह बपु धर्म साक्षात त्वाम मन्ने, कहते हैं कि हे आर्ज, बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आया है, मैं ऐसा मानता हूं, मेरे मन में यह आ रहा है कि जितने बड़े बड़े तपस्वी हैं, ब्रह्मर्षि हैं, भृगु अंगिरा कश्यप जैसे महान तेजस्वी अत्रि आदि ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा जी के बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुत्र, सारे तपस्वियों का तपस्या ही मूर्तिमान होकर आपके रूप में प्रकट हुआ है, त्वाम मन्ने, मैं ऐसा मानता हूं आपको, कथम भूत तप, अरे तपस्या कैसे आ सकती है, तो कहते हैं बपुर धर्म मूर्तिधारी, शरीर धारण करके आप प्रकट हो गए, वो तपस्या मूर्तिमान होकर आ गया है, ऐसा श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि वो तपस्या शरीर धारण कर लिया और वो आपके रूप में है, आप ही ब्रह्मर्षियों का तेज हैं, तपस्या हैं, इस रूप में बलि महाराज प्रशंसा कर रहे हैं, और आपके आने से हमको क्या प्रॉफिट हुआ, कहते हैं अद्यन पितर अस्तिप्ता अद्यन पावितम कुलम अद्य स्विष्ट क्रतुरयम यद भवान आगतो गृहान, अद्य न पितरह तृप्ता, आज हमारे पितर तृप्त हो गए, हमारे जो पूर्वज हैं उनको अंत्येष्टि क्रिया में उनके मंगल के लिए जो भी संस्कार किया जाता है, अंत्येष्टि संस्कार आदि, वो सब कुछ पूरा हो गया, आज हमारे पितर तृप्त हैं, प्रसन्न हैं, मुझे ऐसा लगता है, अद्य न पावितम कुलम, आज हमारा एक कुल पवित्र हो गया, दुनिया भले हमको असुर कहे लेकिन इस असुर वंश में भी जन्म लेने के बाद आप जैसे व्यक्ति का स्वागत करने का अधिकार मिला, तो आज हमारा कुल पवित्र हो गया, अद्य स्विष्ट क्रतुरयम, आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया, आज सुष्टु रूप से पूरा हो गया, सफल हो गया, स्विष्ट सुइष्ट जैसे होना चाहिए, जैसी सफलता चाहिए वैसी सफलता मुझे मिल गई, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, क्यों, जद भवान आगतो गृहान, क्योंकि आज आप हमारे घर पधारे हैं, इसलिए मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि हमारे गुरु पुरोहित लोग बहुत अच्छे ढंग से ईमानदारी से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके हवन किए हैं, इनके द्वारा उच्चारित मंत्र सफल हो गया, कहते हैं यद्याग्नयो मे सुहृता यथा विधि द्विजात्मज त्वच्चरणावने जनई यथं हसो वार भीर्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुभि पदैस्तव, हे द्विजात्मज, हे ब्राह्मण कुमार, त्वत्चरण अवने जनई, आपके पांव पखारने के कारण आप जब यहाँ आए और आपके चरण धोने का अवसर मिला तो हमारा सारा पाप समाप्त हो गया आपके चरण धोन से, उनको धारण करने से। अग्न में यथा विधि अग्नय सुहुता, आज मैंने विधि पूर्वक अग्नि में उत्तम आहुति डाली है। हमारे गुरु बहुत सुंदर ढंग से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके विधि पूर्वक हवन कराए हैं। तथा तनुभि पदई अहो इयम भू हत अंश पुनीता, आपके नन्हे नन्हे छोटे चरणों से पृथ्वी आज निष्पाप हो गई, पवित्र हो गई। आप अपने छोटे छोटे चरणों से जो पृथ्वी पर चले हैं, अहो इयम भू हत अंश पुनीता, यह पृथ्वी भी आज निष्पाप होकर पवित्र हो गई। यह रूप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपका स्वागत है, भले आप पधारे। अनजान में ही स्तुति कर रहे हैं, अनजान में ही भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं बलि महाराज, लेकिन एकदम ऐसी चीज गुण का वर्णन कर रहे हैं। यद यद बटो वांछसि तत् प्रतीक्ष में त्वमार्थिनः विप्रसुतान तर्कये गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम यथा न पेय मुतवा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धान तुरगान गजानवा रथान तथा अर्हतम संप्रतीक्ष। लेकिन हे ब्राह्मण देव, हे विप्रसुतान ब्राह्मण कुमार, त्वाम अर्थिनम, आप वेशभूषा से लग रहा है कि आप कुछ चाहते हैं। आपका जो रूप है, रूप देखकर लगता है कि आप कुछ मांगने के लिए आए हैं। त्वाम अर्थिनम, आप अर्थी हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। अर्हतम बटो, हे परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप वास्तव में आदरणीय हैं, आदर करने लायक। अर्हतम माने पूज्य, बटो ब्रह्मचारी, आप क्या चाहते हैं? आप जो चाहते हो बोलिए। आपकी कुछ इच्छा है, आपको कुछ चाहिए? अभी भगवान वामन देव कुछ बोल नहीं रहे हैं, फिर भी बलि महाराज कहते हैं कुछ चाहिए, बोलिए बोलिए, एकदम संकोच मत कीजिए। जो आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगा। यद्यत वांछसी तत्मे प्रतीक्षा, वह सब कुछ मांग लीजिए जो आपको चाहिए, कोई संकोच मत कीजिए, जो चाहिए वो मांग लीजिए। यद्यत वांछसी तत्मे प्रतीक्षा, जो आपको चाहिए वो मुझसे मांगिए। वामन देव कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब अंदाज पूर्वक कह रहे हैं, गाम पृथ्वी चाहिए, कुछ कुटिया आश्रम बनाना है, कुछ भूमि चाहिए आपको, कांचनम सोना चाहिए, गुणवत धामा या बनाकर आपको भवन दे दिया जाए, गुणवत माने सारे सामग्रियों से सुसज्जित घर, तथा मृष्टम अन्नम या आपको भूख लगी है खूब स्वादिष्ट भोजन, कुछ खाना चाहते हैं, पेयम अगर आप नहीं खाते हो तो बोलिए, जूस उस पियेंगे, क्या चाहिए आपको, खीर चाहिए, दूध चाहिए, क्या चाहिए, कुछ अन्नम या पेयम। अन्नम कहने के बाद हो सकता है कि अन्न न खाते हो, फलहारी हो, तब कहते हैं पेयम, पीने वाला चाहिए कुछ आपको, क्या व्यवस्था करें, बोलिए बोलिए, जो चाहिए मांग लीजिए। या फिर विचार करके कहते हैं कि हो सकता है ब्रह्मचारी कुछ बोल नहीं रहा है, तब कहते हैं वह विप्र कन्याम, आप विवाह करना चाहते हैं ब्राह्मण की कन्या आपको दिला दें, विवाह करेंगे, राजा है ना बलि महाराज, तो राजा है तो अनेक ब्राह्मणों की कन्याएं हैं कुंवारी विवाह करने लायक, तो आप कहेंगे कौन नहीं आपको प्रसन्न करेगी, बोलिए ना, केवल कहने का देर है, विवाह करा दूंगा, बोलिए। अभी भी वामन देव कुछ नहीं बोल रहे हैं। समृद्धान ग्रामन, आपको धन संपत्ति से भरा हुआ गांव दे दिया जाए, बहुत से शिष्य होंगे, ये वो आएंगे, बहुत बड़ा आश्रम बनाना होगा, तो आपको खूब धनी गांव दे दे, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। चलने में दिक्कत हो रहा है, घोड़ा चाहिए, तुरगान आपको घोड़ा चाहिए, गजान ये महात्मा लोग महंत लोग हाथी पर चलते हैं, हाथी चाहिए, फिर भी बोल नहीं रहे हैं। रथान आपको रथ चाहिए, सम प्रतीक्षा मुझसे मांगिए, संकोच मत कीजिए, जो चाहिए वो मांग लीजिए। इस प्रकार में मत प्रतीक्षा गृहाण, हे अर्हतम पूज्यतम, आप पूजने लायक हैं, वास्तव में राजा के पास जो भी संपत्ति है, धन है, वो आप जैसे साधु महात्मा ब्राह्मण को देने में ही उसकी सफलता है। मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका है, आप संकोच मत कीजिए, मांग लीजिए, जो चाहिए वो मांगिए। ऐसे उदार भाव से बलि महाराज देने के मूड में तैयार हैं। अब देखिए बामन देव किस प्रकार से मांगेंगे, इसको हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।